Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dandara na? Bhai, main Brahma ko nahi janta hoon. Brahma ka agyan mujhe hai. To aap agyan ko jande ki nahi jande? तो जानने वाला कौन हो गया? आत्मा है कि नहीं चैतन्य है ना? इसलिए जड़ पदार्थ कोई भी हो वो चेतन में ही रहेगा, उसका स्वभाव ही ऐसा, ये अनुभूति है। शास्त्र भी इसलिए आपको बता दिया, अनुभूति कब प्रामाणिक होती है? जब अनुभूति का आधार कौन हो? दोनों हो। नंदर है ना भी? अनुभूति का आधार शास्त्र, तत् अनुसार गुरु का उपदेश, समझ में ना? इसलिए बड़े बड़े तार्किक होते हैं, बौद्ध लोग बड़े बड़े तार्किक है, उन्होंने बहुत बुद्धि लगाया मोक्ष के लिए, और अंतोदयत्व कहां तक पहुंच गए? सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, बस यहां तक पहुंच गए। सारा संसार कैसा है? क्षणिक है बस। सारा संसार अनित्य है, ये तो हम भी मानते हैं, है ना? तो उससे आगे नहीं जा पाए क्योंकि आधार नहीं है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में आधार क्या है? शास्त्र है। शास्त्र के अनुसार गुरु का उपदेश हो, तीनों यदि मिल जाएंगे तो आपकी अनुभूति सही होगी। इस बात को नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र का उपदेश तद अनुसार गुरु का उपदेश, तद अनुसार अपना अनुभव हो गया ना? और ये बात है कि आप मान लीजिए शास्त्र से, शास्त्र का उपदेश करते हैं, गुरु से केवल रट लिया, तब तो ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा, वो शब्द मात्र हो गया, जैसे तोते का तरह हो गया। इसीलिए आपको तीसरा बता, अपना अनुभव भी होना चाहिए, है ना? तो इसलिए ये अनुभूति भी होती है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, और शास्त्र भी कहता है कि मया दक्षिणा प्रकृति सुजते स चराचरम। ये देखो, कुछ परमात्मा से सत्ता को प्राप्त करके, प्रकाश को प्राप्त करके माया करती है, नहीं तो माया कुछ नहीं कर सकती है। तो ये प्रथम प्रतिबंधक है अनादि माया। दूसरा प्रतिबंधक है आगंतुक प्रतिबंधक। एक प्रतिबंधक नहीं बदल रही है, देखिए अनादि माया अनादि काल से है, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक, ये नहीं बदलता है, लेकिन उसका जो कार्य है वो बदलता रहता है। देखिए, ध्यान में रखिए, इसलिए माया का जो कार्य है ना, प्रतिबंध, वो बदलता रहता है। इसलिए मान लो कि भाई कोई महात्मा हो, संसार का थोड़ा परीक्षण किया तो वैराग्य हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य थोड़ा सा होता है तो माया सोचती है इसको फिर कैसे फंसा जाए, फिर है ना, माया सोचती रहती है। केवल महात्मा के बाद नहीं है, सभी में ऐसा है ना? तो वैराग्य जब हो जाता है महात्मा को तो माया सोचती है इसको कैसे चारा दिया जाए, चारा, जैसे पशु को चारा देते हैं ना, तो सबसे पहले चारा ये देगी, भय, भय, हाँ भय दे देगी। देखो ये चारा कौन सा हुआ, ये भय हो गया चारा। देखो, तुम घर छोड़ दिया, तुम कहां रहोगे बताओ? हाँ, कहां रहना होगा, ये भय दिखा देगा। फिर सोचता है, बात तो सही है, वृद्धावस्था, अभी तो मान ली जवान है हम, कहीं भी रह जाएंगे, वृद्धावस्था में क्या करेंगे भाई? तो भय हो जाता है। जब भय हो जाएगा तो बढ़िया बढ़िया फिर मकान देखेगा, आश्रम देखेगा, कुटिया देखेगा, है ना? अब उसमें यदि फंस गया तो हो गया कल्याण, फिर है, चलो आश्रम में चला गया, है ना, आश्रम में चला गया, थोड़ा सा वैराग्य हुआ, है ना, महात्मा को देख करके। लेकिन ऐसे भी कोई महात्मा होते हैं जिसको बहुत सम्मान मिलता है, कथा प्रवचन करते हैं तो माला चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, तो उसको देख करके फिर कामना हो जाती, भाई देखो ये लोग पढ़े लिखे हैं, कथा प्रवचन करते हैं, सम्मान मिलता है, हमको भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। देखो ये दूसरी चारा होगी, देखो भय तो नहीं है वृद्धावस्था में क्या हुआ, लेकिन ये दूसरी चारा आ गई कि हमको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। कोई कोई तो महात्मा वृद्धावस्था में पढ़ते हैं, मान लो कोई की महात्मा ऐसे बोलते हैं कि पलना निकलना तो भाई पंडितों का काम है, हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो भजन ही करेंगे, है ना। लेकिन अभी तो ये भावना है कि पढ़ना लिखना पंडितों का काम है, महात्मा का काम नहीं है। लेकिन वृद्धावस्था आ जाती है, वो जो संस्कार है ना सुखा है, वो जागृत हो जाता है फिर। इसलिए वृद्धांडक में जागा जागा पर भगवान सुरेश आचार्य कहते हैं, ऐसा मत समझो कि जिस समय तुम वैराग्य हो रहा है संसार के प्रति, उस आसक्ति नहीं आएगी, ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। दृष्टांत भी देते हैं कि ग्रीष्म काल में मान लीजिए कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, घास वगैरह होते हैं, उसमें नहीं दिखता है ग्रीष्म काल में, इसका मतलब यह नहीं है कि बीज नहीं है वहां पर, वृष्टि हो जाएगी फिर आ जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा वैराग्य हो गया संसार के प्रति, ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि पुनः आसक्ति ना हो। जब अनुकूल वस्तु आ जाती है संस्कार फिर जग जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कहना हमारा ये है, माया एक होने पर भी उसका जो कार्य है, उसकी जो चारा रूपी प्रतिबंधक है, वो अनेक प्रकार के होते हैं, बदलती रहती है ना। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जो आगंतुक प्रतिबंधक है, जिसके कारण हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है, स्थिर नहीं हो पा रही है, उसका प्रतिबंधक क्या है, आगंतुक प्रतिबंधक क्या है, उस आगंतुक प्रतिबंधक को बताने के लिए यह द्वितीय अध्याय है। और इसके साथ साथ ऐसे जो आगंतुक प्रतिबंधक दूर हो जाएंगे तो ज्ञान की योग्यता आती है, और ज्ञान की योग्यता आने पर आत्मा की पहचान करानी है, जैसे हनुमान जी ने कराया भगवान राम की पहचान तुलसीदास जी को, दो बार तो नहीं पहचान पाए, तीसरे बार पहचान लिया हाँ यही भगवान राम है। इसी प्रकार यहां पर जमराज जी पहचान कराने वाले हैं ज्ञान की योग्यता आने पर कि यही आत्मा है। इसीलिए यहां पर लिखते हैं भगवान भाष्यकार कि कब पुनः प्रतिबंधो अग्रया बुद्धिर येना तत् अभावात आत्मा न दृश्यते। वो प्रतिबंधक कौन सा है, प्रतिबंधक को आप जानेंगे तब तो आप दूर कर सकते हैं। जैसे मान लो घर में कोई चोरी करता हो, चोर है भाई, चोर को जब तक नहीं पहचानेगा तो घर की चोरी नहीं जाएगी, जो चोर नहीं है उसको पकड़ लेंगे, मारेंगे पीटेंगे तो घर की चोरी चली जाएगी, नहीं जा सकती। इसी प्रकार से कि ज्ञान का जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक कौन है उसको पहचानना चाहिए, पहचान करके फिर छोड़ देना है ऐसा नहीं, उसको हटाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। इसलिए द्वितीय अध्याय देखिए तो द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र है, आप लोग श्रवण करें। परांचि खाने वितण स्वयंभुस् तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यकात्मानम् इच्छत् आवृत चक्षुर अमृतत्वम् इच्छन्। देखो कहते हैं ये जो खानी है ना, खा मतलब इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां, इस इंद्रियों का स्वभाव हो गया परांची, बहिर्मुखता देखो। और एक बात यहां पर समझ लेना चाहिए, साधक का साधकत्व इसी में है कि समस्या का समाधान कहां पर होता है, समस्या अंदर है कि बाहर है, ये सोच लेना चाहिए। इसलिए भी प्रारंभ हो रहा है, साधक हमेशा ये विचार करता है समस्या अपने अंदर है, बाहर नहीं है। आप विचार कर देख लीजिए भाई, आपने किसी को कहा तो ये करो ये मत करो, आपकी बात को उन्होंने नहीं सुना, आप नाराज हो जाते हैं, है? तो आप कहेंगे मानना जरूरी है क्या? विचार कर देख लो, जरूरी तो नहीं है। उनकी इच्छा तो मानेगा, नहीं इच्छा तो नहीं मानेगा। तो समस्या आपके मन में है, आपके अंदर समस्या है। आप एक अभिमान रखते हैं, हम बड़े हैं, हमारी बात माननी चाहिए सब। तो अभिमान रूप जो समस्या है, यही मूल है समस्या का मूल। देखो इसे पूरे संसार में घटाइए आप, इसलिए संसार समस्या का मूल नहीं है। देखो समस्या का मूल अंदर है, इसलिए जहां पर समस्या है और समस्या का समाधान भी अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। देखो तो समस्या का समाधान को यदि अंदर ढूंढे तो समस्या का समाधान भी होगा, और समस्या का समाधान होने पर बुद्धि एकाग्र भी होगी, बहिर्मुखता नहीं होगी। और बुद्धि एकाग्र होने पर, स्थिर होने पर परमात्मा का ज्ञान भी होगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। यदि साधक का साधकत्व तो इसे है कि हमारी समस्या अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए यहां पर विचार किया जा रहा है, ये जो स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को क्या बना दिया, परांची, बहिर्मुख बना दिया, बहिर्मुख। बहिर्मुख बना दिया मतलब क्या, जैसे कि मान लो घर में कोई नई बहू आई और बहू की मर्यादा होती है, बाहर नहीं जा सकती है, सर्वदा नहीं जा सकती है, पति के साथ ही जाएगी। और वही बहू यदि खिड़की के पास बैठ करके बाहर को ही देखता रहे, फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसके प्रति क्या भावना होगी? अच्छी भावना नहीं होगी। इसलिए उसको ऐसा कहा जाएगा, भी तुमको यदि खिड़की का आवास बैठ करके बाहर ही देखना है तो बाहर ही चली जाओ, फिर ये भावना होगी। इसलिए माता लग बुरा नहीं मानना है। तो ये तक दृष्टांत मात्र है। दूसरी बात है, बाहर की वजह से हमेशा देखती रहेगी, बाहर भगा दिया जाएगा। और घर की जो संपत्ति है, संपत्ति उसको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार ये इंद्रियों का स्वभाव ऐसा हो गया तो गोलक रूपी खिड़की में बैठ करके बाहर की फोटो को ही लेती रहती है। किसने बना दिया? परमात्मा ने, स्वयंभू स्वतंत्र परमात्मा ने। जब बाहर की फोटो को देखती रहेगी, जो अंतरात्मा के जो फोटो है ना, उसको नहीं खींच सकते। देखो तो परमात्मा रूपी जो संपत्ति है, वो संपत्ति इंद्रियों को नहीं मिल सकती है। इसलिए बहिर्मुखता बना देना यही उसकी हिंसा है। इसलिए यहां पर लिखते हैं व्यत्रणत, भगवान भाष्यकार लिखते हैं हिंसितवान। इसका दो अर्थ है, तृण धातु हिंसा अर्थ में भी होता है, अनादर अर्थ में भी होता है। भाई किसी का किसी को मार देना गला पकड़ करके, केवल उतने मात्र को हिंसा नहीं कहते हैं, मारना नहीं कहा जाता है। कोई विशिष्ट पुरुष हो उसका अनादर कर देना, घर से भगा देना, वो भी हिंसा ही है, मारना ही है। आप लोग जानते हैं रामायण में जब भगवान राम की लीला का समाप्त हो रहा था, अंतिम अवस्था आ रही थी लीला की, भाई मृत्यु ने सोचा, काल ने सोचा, भाई जाकर सूचना दे दें भाई आपकी लीला समाप्त हो गई, आप अपने धाम में जाइए। जब काल आया भगवान राम के पास कि शर्त रखा कि भाई आपसे गुप्त बात करनी है और इस समय कोई नहीं आना चाहिए बीच में, भगवान राम तो जानते हैं, तो स्वीकार किया, ठीक है कोई नहीं आएगा, यदि आएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी को बोल दिया गया, लक्ष्मण जी गेट पर रहे और उस समय आ गए दुर्वासा। आप तो जानते ही हैं दुर्वासा कैसे है, तो आगे बोले अभी मिलना है भगवान राम से, जरूरी बात करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अभी गुप्त बात चल रही है, अभी आप नहीं मिल सकते। उतने मात्र से ही आप जानते हैं दुर्वासा का स्वभाव, क्रोधित हो गए, उनका क्रोध ही आशीर्वाद है संसार के प्रति। भाई लक्ष्मण ने विचार किया, विशिष्ट व्यक्ति विचार करता है किसमें हानि है किसमें लाभ है। लक्ष्मण जी ने विचार किया भाई मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान ऐश्वर्य की रक्षा होगी, अयोध्या की रक्षा होगी, नहीं तो नाश कर देंगे एक क्षण में। फिर बीच में जाना पड़ा उनको, और काल को तो यही कहना था भी आपका समय हो गया, लीला का आप अपने धाम में जाइए। तो काल जी चले गए, फिर विचार किया भगवान राम ने अब क्या किया जाए। भी ऐसा व्यक्ति लक्षण है जो अत्यंत प्रिय है, उनका गला काटना है, मृत्युदंड देना है। बड़े संकट में पड़ गए भगवान राम, फिर वशिष्ठ जी से परामर्श ली क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने परामर्श दिया भाई किसी के गले को पकड़ करके मारना, यही केवल मारना नहीं है, किसको कटु शब्द कह करके अपमान करके भगा देना, ये भी हिंसा ही है, मारना है। इसी प्रकार से इंद्रियों को तो नहीं मारा भगवान, परमात्मा ने नहीं मारा, अपितु अनादर कर दिया। तुमको जो असली संपत्ति है परमात्मा की संपत्ति, उसका दर्शन तुमको नहीं हो सकता है, इसलिए आज तक भी ये इंद्रियां बाहर की ही फोटो लेती रहती है। जीवात्मा इंद्रियों से बाहर को ही देखता रहता है, अपने स्वरूप परमात्मा को नहीं देख सकता है। इसलिए यहां पर लिखते हैं तस्मात इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुखता होने के कारण परांग पश्यति, बाहर को ही देखती रहती है, बाहर के फोटो को लेती रहती है, न अंतरात्मन। अंतरात्मा जो परमात्मा है साक्षी, इसकी फोटो को नहीं ले सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए, अरे अनादिकाल से जो बहिर्जात्रा है ये तो अनादिकाल से ये रील चल रहा है। ये कब से ही इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोग कर रही है आप नहीं कह सकते। तो प्रतिबिंब से कोई तृप्त नहीं हो सकता है, प्रतिबिंब के पदार्थ से निरंकुश तृप्ति नहीं हो सकती है, क्षणिक तृप्ति तो हो सकती है, निरंकुश तृप्ति नहीं हो सकती है। जैसे बकरी का पेट कभी भी नहीं भरता है, इसलिए इंद्र रूपी जो बकरी है इसका पेट कभी अभी तक भरा ही नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये जो संसार की रील चल रही है इसको रोकना चाहिए। फिर आत्मा का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन, तो ये जो रील है संसार की रील फोटो, इसको रोकना है। इसलिए क्या करना होगा, व्यवहार को तो आप रोक नहीं सकते, ज्ञान करना है व्यवहार अवस्था में ही ज्ञान करना है। इसलिए वेदांत का जो भजन है ये केवल एक घंटा दो घंटा का नहीं है, 24 घंटे का भजन है वेदांत का। खाते पीते उठते समय व्यापार आदि सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करना है। इसलिए वेदांत की समाधि 24 घंटे की समाधि है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, केवल आंख को बंद कर देना ये केवल भजन नहीं है, आंख खोल करके भी भगवान का भजन करना है। अब कैसे करेंगे, इसलिए श्रुति कहती है कश्चित धीर है, ये देखो धीर बनना होगा, धीर। ज्ञान को यदि प्राप्त करना है, अंतर्मुखी यदि बनना है, तो बहुत धैर्य रखना होगा। भाई धैर्य कैसे रखेंगे, तो विवेकी होना पड़ेगा, विवेक को ही प्राप्त करना होगा। जब तक संसार में विवेक नहीं है तब तक संसार में धैर्य नहीं हो सकता है, ये बात सही है। तो किसका विवेक करेंगे फिर, आत्मा अनात्मा का विवेक करो। इसलिए सभी अवस्था में एक दृष्टा होता है एक दृश्य होता है, इसलिए आप क्या करो, सर्वदा व्यवहार अवस्था में अपनी दृष्टित्व जो भाव है इस दृष्टित्व भाव को नहीं छोड़ना है, इसका अभ्यास करना चाहिए सर्वदा व्यवहार के समय। यहां पर तीन बातें बताई जा रही है, इसलिए ये जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय का ये जो प्रथम मंत्र है ये मुख्य है, इसलिए हमने यहां से शुरू किया। तो परमात्मा का भजन करना है, ज्ञान का अभ्यास करना है, व्यवहार अवस्था में भी करना है। इसलिए व्यवहार अवस्था में जब ज्ञान का अभ्यास करेंगे, ब्रह्माभ्यास पंचदशीकार ने कहा ना, आप कैसे करेंगे, तो धैर्य बनना होगा। धैर्य तब आता है जब विवेक हो तो संसार में, तो एक दृष्टा होता है एक दृश्य होता है, जो जाना जा रहा है वो होता है दृश्य, वो हो जाएगा दृश्य। अब दृश्य को जो जानता है तो जानने वाला दृष्टा होगा, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं क्षेत्रज्ञ। एक हो गया क्षेत्र, दूसरा होता है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, चाहे जागृत में हो चाहे सपनों में हो चाहे सुसुप्ति में हो, जो जाना जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र, दृश्य होगा, अनात्मा होगा, जड़ होगा, और जानने वाला क्षेत्र के दृष्टा हो जाएगा। लेकिन आत्मा दृष्टा तो है और आत्मा के दृष्टित्व कभी नहीं जाएगा। जागृत में भी आप दृष्टा रहेंगे, भी आज जब सपन में चले जाएंगे तो सपन का भी दृष्टा हो जाएंगे, और सुसुप्ति में जाएंगे तब भी आप दृष्टा ही रहेंगे, देखो नहीं बदलेगा। तो सुसुप्त जो सुख है, प्रतिबिंबित जो सुख है सुसुप्ति में, उसको भी आप जानने वाले हैं। लेकिन आत्मा दृष्टा होने पर भी आप दृश्य के साथ यदि मिल जाएंगे तब तो आप पकड़े जाएंगे। हाँ, इसी बात को नहीं भूलनी चाहिए यहां पर, इसलिए यहां पर धीर कह रहे हैं। आप किसी का पक्ष यदि लेंगे आप पकड़े जाएंगे, आपको भी कोर्ट में जाना होगा। फिर दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, आप केवल साक्षी भाव में रहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इतना बोलना चाहिए बस, इसने ये किया इसने ये किया, इतना बोलना है। लेकिन किसी का एक पक्ष यदि लेंगे तो आप पकड़े जाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार जैसे घटपटादि ये जैसे दृश्य है, इसी प्रकार शरीर भी दृश्य है कि नहीं। इसलिए जल्दी विव्यक्त हो जाता है शरीर से बाहर के प्रति, इसलिए वैराग्य हो जाता है शरीर से बाहर के प्रति सबसे पहले, ताकि शरीर के प्रति वैराग्य जल्दी नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ा कठिन शरीर में जो विपरीत भावना हो रही है, ये विपरीत भावना जल्दी नहीं जाती है। देखो भाई, आप इतने दिन से सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी साधक ही है भाई। ये तो ज्ञान है कि हम दृष्टा है, सारा का सारा संसार दृश्य, आप जानते हैं, ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान यदि है कि हम दृष्टा है, दृष्टा यदि आत्मा है, तो आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर सकता है, हमारा एटम बम भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी डर क्यों होता है? फिर एक सुई से भी डर क्यों होता है? अब विचार कर देख लो, है ना। दृष्टा और दृश्य का यदि ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्र का यदि ज्ञान है, तो भय क्यों हो रहा है? फिर ये सबको याद है, न जायते मृते वा कदाचित, पर भय क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि शरीर में विपरीत भावना नहीं जा रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि परोक्ष ज्ञान मात्र से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। इस शरीर में जो आम बुद्धि हो रही है, ये जो विपरीत भावना है, ये अपरोक्ष है। इसलिए परोक्ष ज्ञान मात्र से शरीर के प्रति विपरीत भावना नहीं जाएगी। लेकिन थोड़ी सी यदि आसक्ति हो गई शरीर के प्रति, शरीर में अहम बुद्धि थोड़ी सी हो गई, आप चाहो या ना चाहो आप तो कर्ता बन ही जाएंगे। आप कर्ता यदि बन गए, क्रिया के प्रति भोक्ता भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप पाप के कर्ता हो गए, आप पाप का फल दूसरा भोगेगा, ऐसा नहीं होता है। फरमाया ना भाई, इसलिए शरीर के प्रति जो अहमता थोड़ी सी हो जावे तो शरीर का धर्म अपने में आएगा ही आएगा। आप कचड़े खाना में यदि बैठेंगे तो आपके ऊपर कचड़ा तो लोग फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अपन नरेंद्र मोदी कितना भी प्रचार करे, यदि कचड़ा खाना में आप बैठेंगे तो आपके ऊपर नहीं फेंकेंगे, हो गया ना भाई। इसी बार कचड़ा कौन है? शरीर है ना। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये है कचड़ा, और इसी में यदि आपने अहम बुद्धि कर लिया तो आप चाहो या ना चाहो शरीर का धर्म अपने में आएगा कि नहीं आएगा, हो गया ना भाई। ये सपने में अनेक शरीर दिखते हैं, लेकिन जिस शरीर में आपकी यदि अहमता हो गई उस शरीर का धर्म अपने में आएगा ही आएगा। आप ब्राह्मण है और सपने में हो गए क्षत्रिय मान लो, तो आप चाहो या ना चाहो क्षत्रिय का धर्म तो अपने में आएगा ही आएगा। इसलिए व्यवहार अवस्था में हमको ज्ञान प्राप्त करना है, इस भाव को ना भूले कि हम दृष्टा है। जितने भी दिखाई दे रहा है, चाहे घटपटादि हो चाहे शरीर मन बुद्धि हो, हम सबसे अलग है। इस प्रकार जो धैर्य हो जावे तो व्यवहार करते समय भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। घटपटादि दिखाई देने पर भी हम तो उससे अलग है, हमारा स्वरूप सत्य है, दृष्टा है। इस प्रकार यदि अभ्यास करे तो व्यवहार के समय भी अंतर्मुखी हो सकता है। इसका विचार फिर कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।